سو خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور خداوند آپ سب کو آج کے دن میں بڑی برکت دے. اور میری دعا یہ ہے کہ آپ سب آنے والی نسل یسوع مسیح کی پہچان میں دن بدن بڑھتی جائے، اور اس کلونی کے بچے، اس کلونی کے لوگ خداوند میں خوب ترقی کریں، اور یہ کلیسیا نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ایک مثال ٹھہرے. جس طرح بائبل مقدس میں بہت سی کلیسیاں کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو بہت سی کلیسیاں مثال ٹھہری، اس لیے میری یہ دعا ہے کہ ہم سب ایک اچھی مثال بنیں اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اور بہت سے غیر ایماندار لوگوں کے لیے کہ مسیحی زندگی اور مسیحی ایمان کیا ہے. سو آئیں ہم سب خدا کے حضور جھکیں اور اپنے دل کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو، اپنی پوری توجہ کو خداوند کی طرف لگائیں گے، اور بڑی سنجیدگی سے اس کے کلام کو سنیں گے تاکہ وہ کلام پورا ہو جس کے بارے میں پالوس رسول کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح خداوند کے کلام میں سے. سو خداوند کے حضور چند لمحوں کے لیے جھک جائیں گے اور اپنے اپنے دل کی تیاری چاہیں گے. خدا باپ، تیرا کلام زندہ اور پاک اور حد ہوداری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے، تمام زندگیوں کے لیے. آج جو کچھ بھی سیکھیں، جو کچھ بھی پڑھیں تیرے کلام میں سے، ہم سب کی تربیت اور نصیحت کے لیے ہو. یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میز پر اس انگوروں کے شیرہ کو اور اس تیار کرتی روٹی کو، آج ہم اس دن کو منانے کے لیے جا رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے جس دن وہ دنیا کے تمام گناہوں کے کفارے کو لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو جانے والے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے جس رات اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھایا، اس کھانے میں یسوع مسیح نے ان کو بہت ہی عمدہ باتیں سکھائیں جو ان کی زندگی کے لیے بہت ہی کارآمد تھی. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی میں اسے بہت زیادہ عزت اور اسے اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے خداوند خدا اس میز کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جب کبھی بھی تم اکٹھے ہوتے ہو تو اس کھانے کو ہنسی مذاق میں مت اڑا دینا، کیونکہ ایسا کرنتھیوں کی کلیسیا میں ہوا تھا. اور پالوس رسول ان پر افسوس کرتا ہے، پالوس رسول ان پر دکھ کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرے ہم شکل بنو جیسا میں مسیح کا ہم شکل بنا، لیکن تم میں بہت سی بدتیں، کرنتھیوں کے ایمانداروں کو پالوس کہتا ہے، بہت سی بدتیں، بہت سے تفرقے، نفرت اور بہت سی دوسری باتوں نے کیا لے لی، جگہ لے لی ہے، جڑ پکڑ لی ہے. تو اس لیے پالوس رسول ان کو آگاہ کرتا ہے کہ تم اکٹھے تو ہوتے ہو لیکن تمہاری توجہ اس حکم کی تابعداری میں نہیں ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب با बाइबल मुकद्दस में से इस हिस्सा को सीखें, इस खुदावन की कुर्बानी को अहमियत दें। सो आज मैं चाहता हूं कि मुकाशवा की किताब में से, मुकाशवा की किताब में से उस कलीसिया का हाल देखेंगे, उस कलीसिया के बारे में सीखेंगे, उस कलीसिया के बारे में सुनेंगे जिसके बारे में खुदावंद खुदा को क्या था, अफसोस था, शिकायत थी कि उन्होंने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। तो जब हम काशवा की किताब उसका दो बाप उसकी पहली आयात में देखते हैं तो वहां पर खुदावंद का बंदा यूहन्ना कहता है, इस रोया को देखते हुए, इस कलाम को देखते हुए, इस तालीम को हासिल करते हुए, और यहां पर वो कहता है मुकाशफा दो बाप उसकी पहली आयत, इफ़सस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने हाथ में सात सितारे लिए हुए है और सोने के साथ चिरागों में फिरता है, वो ये फरमाता है। आप सोचते होंगे ये सात चिराग, ये सोने के साथ चिराग क्या है, ये सात सितारे क्या हैं? जब हम इस भेद को जानते हैं तो पिछले ही बाप की 20वीं आयत में इसकी वजाहत खुदावंद का बंदा यूहन्ना करता है। आप इसे गौर से सुने, 20वीं आयत में कहता है पहले बाप की, यानी उन सात सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाएं हाथ में देखा था और उन सोने के साथ चिरागों का, वो सात सितारे तो सात कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। कलीसियाओं के फरिश्तों से मुराद यानी के उन पादरियों के बारे में, निगाहबानों के बारे में बात की गई है जिसे बाइबल मुकद्दस कलीसिया के फरिश्ते फरमाती है, और वो सात चिरागदान सात कलीसियां हैं। सो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने सात सितारे लिए हुए और सोने के सात चिराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सबर तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तो उनको तूने उनको अजमा कर झूठा पाया। खुदावंद का कलाम इफिसस की कलीसिया के उन ईमानदारों को बयान करता है कि तुम अपनी मुशक्कत में, अपनी मुश्किल में, अपने सब्र में बहुत ही क्या हो, उम्दा हो, और तुम बदी को देख नहीं सकते, और जो अपने आप को झूठे रसूल कहते हैं जब तुम उनको आजमाते हो तो वो झूठे निकलते हैं, वो अच्छे साबित नहीं होते। बहुत दफा हम भी जब बदी की कोई बात आती है तो हम वाज़ह तौर पर खड़े हो जाते हैं और बदी का इनकार करते हैं, और बहुत दफा सब्र करते हैं, बहुत दफा मशक्कत उठाते हैं, और बहुत दफा दुख उठाते हैं, और मसीह की खातर बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद तीसरी आयत में खुदावंद कहता है, तू सब्र तो करता है और मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थकता नहीं। ये खास बात इफिसस की कलीसिया में पाई जाती थी, वो खुदा के यीशु मसीह की खातर सब्र करने वाली कलीसिया थी, वो यीशु मसीह की खातर, उसके नाम की खातर मुसीबत दुख उठाने को हरगिज नहीं थकती थी। यानी कि इतने दुख उन पर ढाए जाते थे लेकिन वो फिर भी अपने सब्र में कायम रहते थे। और चौथी आयत, दूसरी और तीसरी आयत में खुदावन खुदा उनकी जिंदगी में उस कलीसिया में जो अहम बातें पाई जाती है उसका इजहार करता है, लेकिन चौथी आयत में खुदावंद को उनसे शिकायत है। हो सकता है इस कलीसिया में हमारी तस्वीर दिखे, इस कलीसिया में हो सकता है आप में से कोई ऐसा ईमानदार हो जिसका तल्लक इस तरह हो। हो सकता है आप किसी ईमानदार को जानते हो जिसने अपनी जिंदगी में ये रास्ता और ये तरीका या इस तरह की जिंदगी अपनाई हुई है। तो चौथी आयत में खुदावंद उनसे कहता है कि मुझे तुमसे शिकवा है, तुमसे शिकायत है, तुम पर अफसोस है। सो चौथी आयत में लिखा है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है। इफिसस के ईमानदारों से खुदावंद को ये शिकायत थी, वो सब्र करने में, वो मशक्कत मुसीबत उठाने में, वो दूसरे लोगों को, झूठे लोगों को, जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि तुम लोगों को आजमाना जो भेड़ के भेस में भेड़िए होंगे, और बहुत से झूठे रसूल, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। सो वो इन तमाम बातों को करते थे, वो लोगों को आजमाते थे, वो मुसीबत उठाते थे, वो यीशु मसीह की खातिर दुख मुसीबत सब चीजों का सामना करते थे, लेकिन एक शिकायत थी खुदावंद खुदा को। और वो शिकायत क्या थी, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। यहां पर उनकी हालत यीशु मसीह बयान करता है इस शिकायत में कि उन्होंने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। हम सब टीवी देखते हैं, हम सब फिल्मों से वाकिफ हैं, हम सब देखते हैं जब फिल्मों में किस तरह जब कोई किसकी लड़की या लड़का किसी की मोहब्बत में पागल होता है तो वो अपनी हदों को तोड़ देता है, वो हर तरह की दीवारों को पार कर जाता है और दुख और मुसीबत उठाने के लिए कांच और बहुत से दूसरे जतन करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी तरह हमारे माहौल में भी बहुत दफा पाया जाता है, जिसे बहुत दफा कहते हैं कि लड़का दीवाना हो गया वा, लड़की दीवानी हो गई या, उन्हें अपने होशोवाज खो देते या, क्योंकि पहली मोहब्बत, पहली पहली बारी दा जिन्हों कहते के प्यार हो जाना। खुदावंद 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 खुदा को ये शिकायत इस कलीसिया थी, कलीसिया से थी कि उन्होंने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। जिस तरह बहुत दफा नए नए रिश्ता में खावंद अपनी बीवी के लिए सुर्खी पाउडर, अच्छे अच्छे कपड़े, दिन रात उसके लिए फ्रूट आ रहा है, आइसक्रीम आ रही है, दूसरी चीजें वगैरह, लेकिन आस्ता आस्ता वो मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है और फिर बीवी कहती है कि मिसाल के तौर पर रिफान के अबू, आपकी मोहब्बत कम हो गई है। रिफान का अबू कहता है काम बहुत ज्यादा है, पैसे कम हैं, ये है वो है, बहुत सी वजूहात निकल आती हैं। तो यहां पर खुदावंद शिकायत उनसे है कि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, इसलिए जैसे बीवी अपने खावंद को कहती है कि क्या वजह है, यहां पर यीशु मसीह जो दुल्हा है, यीशु मसीह जो दुल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है, उसका बदन है, यीशु मसीह दुल्हा होते हुए कलीसिया का सर होते हुए कलीसिया से पूछता है और कहता है पस ख्याल कर के तू कहां से गिरा है, बस ख्याल कर तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदानों को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदावंद खुदा यहां पर उनको नतीजा बताता है कि अगर तुम अपनी इस बेवफाई में, अपनी इस अपनी मोहब्बत को जो ठंडी पड़ गई है, अगर इसी में जिंदगी गुजारोगे तो एक वक्त आएगा मैं तुमको हटा दूंगा, तुम बेकार हो जाओगे, तुम इस काबिल नहीं रहोगे कि मैं उसे इस्तेमाल करूं, कि मैं उसे कहूं कि ये मेरे लोग हैं। और इसलिए खुदा कहता है कि तू ख्याल कर कहां से गिरा है। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नुकेलियों के कामों से नफरत रखता है जिससे मैं भी नफरत रखता हूं। ये ऐसे लोगों का ग्रुप था नकेलियों, जो पहले खुदा पर यकीन रखते थे लेकिन बाद में बुत परस्ती में पड़ गए, बाद में वो खुदावंद की मुखालफत में जिंदगी बसर करना शुरू हो गए। इसका हमें तलक बाइबल मुकद्दस में मिलता है। फिर किस वक्त बहुत गहरे में जाकर इस फिरके के बारे में, इस ग्रुप के बारे में, इन लोगों के बारे में सीखेंगे कि उनका क्या तरीकाकार था और क्यों उन्होंने अपनी राहें बदल ली। और इसका जिक्र हमें इमाल की किताब में मिलेगा। और खुदावंद को इस ग्रुप से नफरत थी और खुदावंद उनको कहता है कि हां मैं जानता हूं तुमको भी उनसे नफरत है, इसलिए जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। ये अजर हर एक ईमानदार के लिए है। जरूरत है यहां पर गौर करने की कि जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद ने हमें कान इसलिए दिए हैं कि उसका कलाम सुने और उसकी फरमाबरदारी करें। बहुत दफा हम जैसे खुदावंद का बंदा यकूब कहता है कि तुम कलाम को सुनने वाले ही ना बनो बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। तो ये कलीसिया है जो हमने मिसाल के तौर पर देखी कि उनकी जिंदगी में खुदावंद को कुछ शिकायत है और वो शिकायत क्या है कि उन्होंने अपनी पहली सी मोहब्बत खुदावंद से छोड़ दी। हालांकि वो बेशक बहुत से दूसरे अच्छे काम करते थे, वो बहुत सा सब्र रखते थे, मुसीबत उठाते थे, लेकिन खुदावंद कहता है कि ठीक है लेकिन मुझे तुमसे शिकायत है कि तुम्हारी मोहब्बत मुझसे पहली जैसी नहीं है। हो सकता है कि हमारी कलीसिया में बहुत से ऐसे बहन भाई हों जिन्होंने अपनी मोहब्बत खुदावंद से खत्म कर दी हो या ठंडी पड़ गई हो किसी ना किसी वजह से। मोहब्बत में कमी किसी ना किसी वजह से आती है। मिसाल के तौर पर रोजमर्रा के रिश्तों में हम देख सकते हैं, रोजमर्रा की रिश्तेदारी में बहुत दफा रिश्तेदारी टूटती है। किस वजह से? मुझे शादी पर नहीं बुलाया इसलिए हमारा रिश्ता खत्म हो गया, और वो मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। ये छोटी छोटी वजूहात बहुत दफा हम लेकर बहुत दफा खानदानों के खानदान खराब हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। बहुत दफा शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी मोहब्बत के बाग की बजाय वो कांटों का बाग बन जाती है, उजड़ा हुआ रेगिस्तान बन जाती है। इसलिए खुदावंद खुदा ने हमसे मोहब्बत की है और इसी से हमें पता चलता है कि उसने हमसे मोहब्बत की है। और उसकी मोहब्बत का इजहार हम देख सकते हैं। और मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब, वहां पर यीशु मसीह बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है, और वो मोहब्बत लफ्जी नहीं है, वो मोहब्बत ठंडी पड़ी हुई मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत ऐसी मोहब्बत नहीं कि जिसके जिसके जिसका जिसका फल नजर ना आता हो। 13वें बाब की 34वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह, ये वो रात थी, ये वो वक्त है जब हम यूहन्ना की इंजील का मुतालिया करते हैं, तो 13वें बाब से लेकर 17वें बाब तक का ये वो वाकया है जिस रात यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के साथ खाना खा रहा था, जिस वक्त यीशु मसीह ने 13वें बाब से लेकर 17वें बाब तक की ये लंबी गुफ्तगू अपने शिगिर्दों के साथ की और उन्हें बहुत से भेद और बहुत सी सच्चाइयां सिखाई, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा वक्त आ पहुंचा है, जिसे वो जानता था कि वो पकड़वाया जाएगा, यहूदा इस्करियोती उसकी मुखालफत में जाएगा और वो रूमियों के हवाले किया जाएगा और बहुत सा दुख उठाएगा और पत्रस उसका इनकार करेगा और सारे शिगिर्द उसे छोड़ जाएंगे। लेकिन उसने ये बड़ा सबक उनको सिखाया और जब 34वीं आयत में देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यीशु मसीह यहां पर उनको सिखा रहा है कि ये नया हुक्म है। क्यों यीशु मसीह ने नया हुक्म कहा? क्योंकि पुराने अहदनामा में हमें मिलता है कि तुम अपने सताने वालों के लिए, क्या सताने वालों के लिए, जब हम मत्ती की इंजील को देखते हैं तो वहां पर हमें यीशु मसीह ये बातें सिखाता हुआ नजर आता है कि शरीयत हमें क्या कहती है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, और अपने दुश्मन से मोहब्बत रख और अपने सताने वाले के लिए दुआ कर। लेकिन शरीयत में क्या था? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और सिर्फ क्या थी, शर्त की बुनियाद पर, तकाजे के तौर पर मोहब्बत थी। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है कि बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी वजह के, अपने तमाम जिंदगी के हालात में एक दूसरे से मोहब्बत रखना, क्योंकि 35वीं आयत में, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शिगिर्द हो। इसीलिए मैंने ये बात इस बात से शुरू की कि आप इस दुनिया में वो खुदावंद खुदा के लोग हो, दुनिया का नूर हो, आप दुनिया का नूर हो और जमीन का नमक हो। नमक की मिसाल, नमक के बाद क्यों यीशु मसीह ने की? उस दौर में और हमारे दौर में भी हम देख सकते हैं, जब हमारे पास ज्यादा मिकदार में यानी कि ज्यादा गोश्त होता है तो हम बहुत दफा उस गोश्त को नमक लगाकर सुखा लेते हैं ताकि वो बहुत से अरसे तक महफूज रहे और जब चाहें उसे पका सकते हैं। और नमक की बात यीशु मसीह इसलिए कर रहा है कि तुम दुनिया में बहुत से लोगों को महफूज करने का बायस हो। यीशु मसीह नूर के बारे में इसलिए बात कर रहा है कि इस तरीके की दुनिया में तुम्हारी जिंदगी वो नूर है जो दुनिया के तरीके के लोगों को रोशनी की तरफ ला सकते हैं। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। और इसीलिए आज हम इस मेज के सामने हाजिर हैं जिसमें यीशु मसीह ने ये हुक्म हमें दिया है, ये नया अहद दिया है, ये वादा किया है, ये अहद बांधा है। तो 13वां बाप जो यूहन्ना की इंजील में बात चल रही है, उसी बात के बारे में पालूस रसूल ने कई साल बाद जब उसने यीशु मसीह को कबूल किया तो यीशु मसीह ने रूबरू उसे ये कलाम, उसे ये मकाशफा उस तक पहुंचाया, उसे सिखाया ताकि हम आज सीखने वाले बने। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने जहन को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। ये अंगूर का जो शीरा आपके सामने पड़ा है, ये यीशु मसीह की उस कुर्बानी को जाहिर करता है, जैसे पुराने अहदनामा में जब काहिन इकट्ठे होते थे, कुर्बानी करते थे, तो खून जो बहाया जाता था उस बर्रे का, उस बेदाग बर्रे का, वो इस चीज की अलामत थी कि उनके गुनाहों का कफारा हुआ है, उनको रहाई मिली है। और वो क्या करते थे? मैं का प्याला पीते थे, जो इस बात की अलामत थी कि उन्होंने मखलसी हासिल की है, उन्हें रहाई मिली है। और फिर बदन उस बात को उन्हें याद दिलाता था, जो रोटी यीशु मसीह ने तोड़ी, इस बात को उन्हें याद दिलाता था कि उन्होंने 300 से ज्यादा साल मिस्र की गुलामी में गुजारी है। वो कड़वी रोटी वो उनको याद दिलाती थी उनकी गुलामी को। और जब यीशु मसीह ने अपना बदन कुर्बान होने के लिए दे दिया, तो उसने हमें गुनाह की गुलामी से निकालकर, उस गुनाह की मंडी से खरीद कर अपनी बादशाही में जगह दी है। इसलिए हमें इस मेज को बहुत अहम जानने की जरूरत है। बहुत दफा हम ईमानदार होते हुए 20 साल से, 15 साल से, 30 साल से, बहुत से 50 साल से ईमानदार हैं, लेकिन वो इस अमल को नहीं करते, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं नहीं मैं नापाक हूं, नहीं नहीं मुझे ये वजह है, वो वजह है, मैं इसे नहीं ले सकता, ये मैं इस काबिल नहीं हूं। लेकिन याद रखें, हम इस हवाला को जब पढ़ेंगे तो आप जरूर इसका फैसला करेंगे कि ये हुक्म है सबके लिए, और इसके लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, ताकि हम इस रोटी को खाएं और इस प्याला को पिएं, ताकि याद रखें कि उस खुदावन ने हमारे लिए कैसी अजीम कुर्बानी दी है। और आपको याद होगा, यीशु मसीह ने जब मत्ती की इंजील उसका 26वां बाप, वहां पर रोटी ली और रोटी तोड़ी और बरकत देकर शुक्र किया और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसी तरह उसने प्याला भी लिया। नौजवानों से इल्तमास है कि वो इसके लिए तैयारी करें। सबसे पहले आपको रोटी पेश की जाएगी, अपनी इस रोटी को संभाले रखें, थामे रखें, और फिर आप तक ये जूस पहुंचाया जाएगा। पहला ग्रंथियों 11वां बाप उसकी 23वीं आयत में यूं लिखा है, इसे थामे रखें और मैं आपके लिए हवाला पढ़ूंगा, फिर हम पहले हम रोटी लेंगे और उसके बाद फिर प्याला लेंगे और अपनी इबादत को सर अंजाम देंगे। पहला ग्रंथियों 11वां बाप उसकी 23वीं आयत में पालूस कहता है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। हम इस रोटी को खाएंगे और खामोशी में झुककर खुदावन खुदा को देखेंगे, जैसे इस गीत में देखा कि वो सलीब पर लटकाया गया मेरे और आपके और पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए। हम रोटी को खाएंगे। इसी तरह 25वीं आयत, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। हम इस प्याला को पिएंगे और ये इस बात का इजहार है कि यीशु मसीह ने आपके गुनाहों की कीमत अदा की है, आपको उसने गुनाह की मंडी से खरीदा है और उसने अपने लोग बनाया है। सो इस बात को याद रखें कि जब कभी भी हम इस रस्म को करते हैं, हम इस बात पर यकीन करते हैं, उसे दोबारा याद करते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर हमारी गुनाहों को, पूरी दुनिया को क्या की है, मखलसी दी है, और जो कोई उसके बेटे खुदावंद यीशु पर ईमान लाएगा इस दुनिया में से, खा वो किसी भी रंग से, किसी भी कबीला से, किसी भी नस्ल से, किसी भी जुबान से है, किसी भी मुल्क से उसका तल्लक है, जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा और किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि निजात ईमान के वसीला से है और ये खुदा का फजल है। इसलिए हम उसकी मौत का इजहार करते हैं। और पालूस कहता है, इस वास्ते जो कोई नामनासब तौर पर खुदा की रोटी खाता या उसके प्याले में से पीता, वो खुदा के बदन और उसके खून के बारे में कसूरवार होगा। यहां पर सादा सी बात पालूस कहता है कि जब कभी तुम खुदा की मेज के सामने आते हो, अपने आप को पाक साफ, अपने गुनाह, अपनी कमी कमजोरी का इजहार खुदा के सामने करने की जरूरत है, ताकि तुम उस गुनाह गलती से पाक रहो, ताकि तुम कसूरवार ना ठहरो। ये बात पालूस रसूल यहां पर सिखा रहा है। सो आए हम खुदा के हुजूर झुके और बाकी की सारी मीटिंग को भाई संभालेंगे। खुदावन खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए और आज की इस फतह के लिए जो यीशु मसीह में हमें हासिल है, क्योंकि यीशु मसीह वो वाहद है जो जिसकी कब्र खाली है और जिसने ये दावा किया कि मैं इस मकदस को ढा दूंगा और फिर तीसरे दिन तमीर करूंगा। खुदावन इस तेरी मोहब्बत के लिए, खुदा बाप उसकी तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि आज भी उसकी कब्र खाली है, कि वो ही वाहद है जिसने कहा कि ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा और ऐ मौत मैंने तुझ पर फतह पाई। सो खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तूने यीशु मसीह में हमें ये फतह बख्शी है, फतह मंदी की जिंदगी गुजारने की कुव्वत और ताकत दे। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।